मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 21 जनवरी 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी के साथ ही आज मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की इस साल सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और विशेष स्वागत इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि इन दो साथियों के नाम के जरिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर के क्लासेस की शुरुआत हो रही है। इनमें पहला नाम है मिस्टर ओपी जाट का जो अजमेर राजस्थान से हैं और दूसरा नाम है नरेश कुमार पटेल का जो रायगढ़ से हैं। मैं समझता हूं कि शायद ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ होगा। ओपी जाट का जो नाम है मुझे ध्यान आ रहा है कि इस बीच में इनके काफी मेल आते रहे हैं और बड़े प्यारे और अच्छे मेल लिखते रहे थे और शायद एक बार मैंने इनके मेल को बेस्ट मेल में शामिल भी किया था। तो ओपी जाट आपका स्वागत है और नरेश कुमार पटेल आपका भी स्वागत है और आप दोनों का स्वागत मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से कर रहा हूं। फ्रेंड्स फरवरी का बैच पूरा हो चुका है, उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं होनी है उसकी शुरुआत एकेडमी कर चुकी है। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन फरवरी बैच के स्टूडेंट्स के पास भेजे जा रहे हैं। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि एकेडमी से जो जो भी सूचनाएं उन्हें मिल रही हैं, जो जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें मिल रहे हैं, प्लीज उन्हें पूरे डिसिप्लिन के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो सके आप पूरा करके भेजें ताकि अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जा सके। साथ ही जो फरवरी बैच के जो स्टूडेंट हैं जो आने वाले हैं, हमारे यहाँ एक सिस्टम रहा है कि चूंकि पूरे देश से स्टूडेंट्स आते हैं और हम चाहते हैं कि बाद में स्टूडेंट्स के अपने ग्रुप बने और उस ग्रुप में वो आपस में इंटरेक्शन करें, डेली आडियो पर बातचीत करें, जो क्लासेस में बताया जाएगा उन सब पर वो आपस में बातचीत करें। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उनका मेल मिलाप हो। चूंकि अब बैच कंप्लीट हो गया है इसलिए हम लोग ये व्यवस्था भी करते हैं कि जो भी स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर एकेडमी के पास भेजना चाहता है और ये चाहता है कि उनका मोबाइल नंबर दूसरे स्टूडेंट्स को बताया जाए, खासकर उनके अपने एरियाज से जो आ रहे हैं ताकि वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें, तो ऐसे स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर भेज सकते हैं। उनका नंबर यहां डेली ऑडियो में अनाउंस कर दिया जाएगा और फिर वो जो भी स्टूडेंट्स उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे उनसे वो कॉन्टेक्ट कर लेंगे। दोस्तों नया बैच जो सितंबर अक्टूबर का है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नए बैच के लिए शुरू हो गए हैं और ये एक बड़ा इत्तफाक था कि कल मैडम और मैं एक फिल्म देखने गए। हालांकि आप लोगों में से जिन्होंने भी जिनको भी फिल्मों का शौक है वो इस फिल्म को पहले ही देख चुके होंगे क्योंकि ये फिल्म इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं और उस फिल्म का नाम है वजीर। तो क्यों ना हम उससे ही आज अपने लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत करें। दोस्तों मैं वजीर फिल्म पर आपसे चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वजीर फिल्म में जो सबसे बड़ी बात थी उसकी चर्चा मैं जरूर करूंगा और मुझे लगता है कि शायद किसी भी फिल्म के माध्यम से यह संदेश इतने स्पष्ट तौर पर पहली बार दिया गया हो। आप लोगों में से जिन्होंने भी वजीर फिल्म देखी हो वो थोड़ा सा अपने दिमाग में उसकी कहानी को याद करने की कोशिश करें, लाकर देखें तो मेरी बातें ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी और जिन्होंने फिल्म नहीं भी देखी है उन्हें भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। होता कुल मिलाकर के ये है मित्रों कि उसमें जो फरहान अख्तर हैं उनकी बेटी की हत्या, छोटी सी बेचारी बेटी की हत्या कर दी जाती है एक आतंकवादियों के द्वारा और फरहान अख्तर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन हैं, उनकी पत्नी अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी जो बेटी है वो एक जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके हाथों एक तरह से सीढ़ियों पर लुढ़का कर मार दी जाती है, लेकिन कहा यह जाता है कि वो लड़की सीढ़ियों से खुद लुढ़क कर मर गई। ये जो अमिताभ बच्चन हैं ये चेस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अब वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं, तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो बच्चों को चेस खेलना सिखाते हैं, उनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके माध्यम से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जब फरहान अख्तर एक दिन उनके पास पहुंचते हैं, वो एक छोटे से घटना का क्रम है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फरहान अख्तर जो खुद भी बहुत निराश हताश हैं अपनी बेटी की मृत्यु के बाद, अमिताभ बच्चन के पास पहुंचते हैं और अमिताभ बच्चन समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है और ऑफर करते हैं कि आओ चेस खेलो। उनकी बच्ची भी चेस खेलती थी। वहां अमिताभ बच्चन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, बहुत ही गजब का संवाद है। उन्होंने कहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा है जब वो सीख जाते हैं, अब मैं जिस डायलॉग को बोल रहा हूं वो उस समय की बात है जब फरहान अख्तर धीरे धीरे चेस खेलना सीख जाते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि फिल्म में फरहान अख्तर को उनके यहां के छोटे छोटे बच्चे भी हराने लगते हैं, लेकिन बाद में फरहान अख्तर इस तरह से सीख जाते हैं कि वो अमिताभ बच्चन तक को एक तरीके से मात देने की स्थिति में आ जाते हैं। जब ऐसा होता है तब अमिताभ बच्चन ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग कहा है। मित्रों, मैं समझता हूं कि यह केवल उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं या और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि हर उसके लिए है जो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी बेहतर करना चाह रहा है, दूसरों से आगे निकलना चाह रहा है, और अगर आगे नग भी निकलना चाह रहा हो तो अपनी ही रफ्तार को बढ़ाना चाह रहा हो। उन्होंने कहा फरहान अख्तर से, अमिताभ बच्चन ने, कि अब लगता है कि तुम सीखना सीख गए हो, तो जब सीखना सीख गए हो तो खेलना सीख जाओगे, और जब खेलना सीख जाओगे तो जीत जाओगे। मित्रों, ये डायलॉग थोड़ा सा लंबा है, इसमें मैं शुरू के केवल चार शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहते हैं लगता है कि सीखना सीख गए हो, ये शब्द चार शब्द हैं, सीखना सीख गए हो। दोस्तों, मैंने अपने ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में आप लोगों से एक विशेष बात कही थी और वो ये कि जब भी कोई बात कही जाती है तो दिमाग के साथ साथ उसको दिल से भी सुनने की कोशिश कीजिए, दिल से समझने की कोशिश कीजिए। सुनते तो हम कानों से ही हैं, दिमाग उसका अर्थ बताता है, लेकिन दिल तक उतरने दीजिए उसको, तो आप देखेंगे कि कैसे वो चीजें महसूस होने लगती हैं। इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए कि सीखना सीख गए हो। सामान्य तौर पर तो हम सुनते हैं अच्छा लगता है कि सीखना सीख, दोनों शब्द एक बार आया है तो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगा है, लेकिन इसमें कितनी गजब की फिलॉसफी है, सीखना सीख गए हो। हम तो अभी तक केवल सीखना ही समझ रहे थे, हम हर चीज को सीखते ही हैं, हमने अंग्रेजी भाषा सीखी, हमने चलना सीखा, हमने बाइक चलानी सीखी, ये तो हम सब सीख ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक विशेष बात है वो ये है कि सीखा कैसे जाता है, तुम यह सीख गए हो। दोस्तों, ईमानदारी से बताइए कि क्या यह वाक्य सुनने के बाद या मेरे थोड़े से इस जरा से एक्सप्लेनेशन के बाद आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था? जरूर हुआ होगा, होना ही चाहिए। क्या सच में सीखने की भी कोई प्रक्रिया है? सीखना तो है, सीखना तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्या सीखना भी कैसे सीखा जाता है यह भी जानना जरूरी है? क्या यह होता है या यह केवल कहने की बात है? मित्रों, यह होता है, और यही वो सबसे बड़ी बात है जो इस तथ्य को अपनाकर, इस प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ते हैं वो दुनिया में बहुत कुछ कर जाते हैं और दूसरों की तुलना में तो बहुत आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं इसे थोड़ा सा अब सिविल सर्विस से जोड़ करके कहना चाहूंगा और आप इसे किसी भी दूसरे बात से, कोई दूसरी बात से जोड़कर देख सकते हैं। अक्सर मैं अपने 15 दिन की इन क्लासेस के बारे में कहता हूं कि इन 15 दिन की क्लासेस में हम स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, राइट? लोगों को यह बहुत बड़ा भ्रम है कि सारी सफलताएं मेहनत से मिलती हैं। इसके बारे में मैं पहले भी कुछ बातें कर चुका हूं, लेकिन चूंकि अभी एक वजीर फिल्म का बड़ा खूबसूरत डायलॉग है तो मुझे अपनी उन्हीं बातों को फिर से दोहराना पड़ रहा है। हमें लगता है कि सारी चीजें मेहनत से होती हैं, सिविल सर्विस की जो सफलता है चूंकि वो पढ़ाई से जुड़ी हुई है, उसका वो एक सिलेबस है, इसके बाद परीक्षा होती है, उसमें पेपर्स आते हैं, स्टूडेंट्स उत्तर लिखते हैं, फिर कॉपियों का मूल्यांकन होता है और इसके बाद नंबर मिलते हैं। जिनको सबसे ज्यादा नंबर मिल जाते हैं कुछ लोगों को, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है। यानी कि सिविल सर्विस की सफलता का जो पूरा का पूरा केंद्र है वो अध्ययन में है, स्टडी में है। तो जो जितना ज्यादा स्टडी करेगा, जो जितना ज्यादा स्टडी करेगा वो उतनी ज्यादा सफलता के करीब पहुंच जाएगा। ये हम सबके दिमाग में बैठा हुआ है। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मती था दोस्तों कि मेरे दिमाग में ये मुद्दा बैठा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घंटों को, मेहनत को तरजीह नहीं देता। मैं तरजीह इस बात को देता हूं कि जो काम किया जाना है वो किया जाना है। अब कितने में आप कर सकते हैं यह आप देखिए, कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं ये आप देखिए। तो मित्रों, मुझे कम से कम ये तो 100% लगता है कि जो सिविल सर्विस की जो सफलता है वो मूलतः इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको इसकी जो तैयारी जिस तरीके से करनी चाहिए वो मालूम है कि नहीं है। ये केवल स्टडी का मामला नहीं है, ये केवल खेल खेलने का मामला नहीं है। उससे पहले मालूम होना चाहिए कि खेल खेला कैसे जाता है। फिर तो खेलना है ही, बिना खेले बात नहीं बनेगी। लेकिन पहले मालूम तो हो कि खेला कैसे जाता है। पहली बात जो हम यहां 15 दिन की क्लासेस में सिर्फ यही बताते हैं। सोच करके देखिए, आप कभी कभी सोचेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यार ऐसा क्या होता है कि 90 घंटे तक सिर्फ यही बताया जाता है कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। जी हां, यही बताया जाता है। आपको अपनी पूरी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, अभी तक का जो एग्जाम का सिनेरियो है वो आपको किस तरह की रणनीति बनाने के लिए एक तरह से इंडिकेट कर रहा है। फिर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट्स को कितना वेटेज दिया जाना चाहिए और कैसे आप सारे सब्जेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके कैसे आप फाउंडेशन को समझेंगे, उनको कैसे मॉडल्स के आधार पर उन सब्जेक्ट्स की जानकारी हासिल करेंगे ताकि उन सब्जेक्ट्स पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाए। कैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट करेंगे, कैसे आपकी अंतर्दृष्टि विकसित होगी, कैसे आप में अनुशासन आएगा, कैसे पर्सनालिटी डेवलप होगी, इन सारी छोटी छोटी चीजों की कारीगरी इन 15 दिनों में की जाती है। अब मैं आता हूं कि सीखना सीख गए हो इस पर। अभी तक तो हम सिखाएंगे, 15 दिन तो जो मैंने आपसे बात कही वो सिखाने की बात कही, लेकिन जो सीखना सीख गए हो वो क्या है मित्रों? वो बहुत सिंपल सी चीज है और वो ये है जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यहां आने से पहले आपको कुछ अपनी तैयारी करके आनी होगी। वो होगी आपकी मानसिक तैयारी, जिसको मैं मेंटल स्ट्रेंथ कहता हूं, मानसिक मजबूती कहता हूं, जिसको मैं कहता हूं कि खाली होकर आइए, भरे हुए मत आइए। अगर आप भरे हुए आएंगे तो यहां भरने के लिए फिर और जगह ही नहीं रहेगी, तो हम कर भी क्या लेंगे। खाली होकर आइए, मानसिक मजबूती के साथ आइए, एक संकल्प लेकर आइए, पूरे समर्पण भाव के साथ आइए। ये सारी बातें बीच बीच में मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूं। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो इन बातों को सही सही न पकड़ पा रहे हों, समझ न पा रहे हों, और अगर पकड़ और समझ भी पा रहे हैं तो वो ये नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं कि हम ऐसा करें कैसे, क्योंकि अब कोई थैला तो है नहीं कि थैले को उलट दिया और खाली हो गया, भरा हुआ थैला खाली हो गया। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये संकट खड़ा हो सकता है कि फिर हम अपने को खाली कैसे करें। सर, जिस मानसिक मजबूती की बात करते हैं या मानसिक वातावरण की बात करते हैं, उस मानसिक वातावरण से क्या मतलब है, उसको हम कैसे बनाएं, जिसे मैं जनरली कैनवास का नाम देता हूं। चित्र का चित्र बनाने से पहले कैनवास को पेंट करता है, तो आपको भी अपना कैनवास तैयार करके यहां आना होगा। और डेफिनेटली एकेडमी तो फिर शुरू में कैनवास बनाएगी, लेकिन कम से कम आपका अपना भी तो कुछ होना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं मित्रों, कभी कभी आपके मन में द्वंद्व पैदा करती होंगी, संकट पैदा करती होंगी, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इनके बारे में भी इसी लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में हम लोग बातें करेंगे। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात है मित्रों, जिसके बाद मैं इस लाइफ मैनेजमेंट वाले चरण को समाप्त करना चाहूंगा, वो ये है कि जिंदगी में याद रखिए, केवल सीखने से बात नहीं होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि सीखा कैसे जाता है। सीखने का भी अपना एक विज्ञान है, और यहां की जो क्लासेस होंगी वो आपको बताएंगे कि पढ़ने का विज्ञान क्या है, पढ़ा कैसे जाता है। हम सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं ये जानने से पहले ही कि पढ़ा कैसे जाता है। तो दोस्तों, आप लाइफ के किसी भी फील्ड में जाएं, झाड़ू लगाने का काम ही क्यों ना हो, मालूम होना चाहिए कि झाड़ू लगाई कैसे जाती है। व्यापार करने का काम हो, मालूम होना चाहिए कि व्यापार किया कैसे जाता है। आपको और कुछ नहीं तो नौकरी ही करने का काम हो, तो मालूम होना चाहिए कि नौकरी कैसे किया जाता है। नौकरी ऐसा नहीं है कि 10 बजे से 5 बजे 6 बजे तक गए और वहां टाइम काट करके आ गए और जो काम दे दिया गया वो हम किया और बात खत्म हो गई। नौकरी के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमारा माइंड का सेटअप कैसा होना चाहिए, हमारी हुनर कैसे होनी चाहिए, बॉस के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए, सबऑर्डिनेट के लिए आप लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करेंगे, मीटिंग्स कैसे अटेंड करेंगे, ये सारे उसके हिस्से हैं, तब जाकर के वो नौकरी होती है। और जब हम सीख जाते हैं किसी भी चीज को कि सीखते कैसे हैं, तो दोस्तों उसके अर्थ बदल जाते हैं, वो चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, बहुत खुशनुमा हो जाती है। और जब वो चीजें आसान और खुशनुमा हो जाती हैं तो डेफिनेटली जिंदगी भी बहुत आसान और खुशनुमा हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कुछ खबरें हैं, हालांकि वो छोटी छोटी ही खबरें हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बातचीत करने के लिए कुछ तो है ही। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मुझे लगी फ्रेंड्स सिविल सर्विस के लिहाज से, वो थी कि कैबिनेट ने खासकर अब ये फैसला किया है कि कंपोस्ट खाद को बढ़ावा देने के लिए अब उसे भी सब्सिडी दी जाएगी। सच पूछिए तो जब मैंने ये खबर सुनी I was thrilled, मैं मतलब बिल्कुल रोमांचित हो गया, वास्तव में मैं रोमांचित हो गया दोस्तों। रोमांचित इस मायने में कि अनंत कुमार जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही, जो आप लोगों ने न्यूज में सुनी होगी। और मैं अनंत कुमार जी जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, ये बात है शायद 98 के आसपास की बात होगी, तो मुझे उनके साथ कुछ दिनों तक काम करने का मौका मिला है। उन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट बात कही वो कहा, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी खाद कह लीजिए, जो केमिकल्स मैनुअर है, यूरिया सुपरफास्फेट, गांव में उसे अंग्रेजी खाद कहा जाता है, अब उसका नाम बदल गया होगा, लेकिन वो 75-80 के आसपास उसे अंग्रेजी खाद कहा जाता था, तो उस पर तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आपको मालूम है कि जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है वो इसी के माध्यम से दी जाती है, जो खाद यूज करते हैं उस पर सब्सिडी दी जाती है, जो छिड़काव उस पेस्टिसाइड उस पर सब्सिडी दी जाती है, इसके माध्यम से एक तरीके कह लीजिए कि आप जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चरल जो चीजें हैं उनकी जो लागत है, उत्पादन लागत है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि बाजार में उपभोक्ताओं को वो एक ठीक ठाक रेट में मिल सके, सरकार इस रूप में सब्सिडी देती है। लेकिन अभी तक कंपोस्ट खाद के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती थी। सच पूछिए तो ये सुनकर मैं दंग रह गया। हालांकि मुझे भी मालूम था कि सब्सिडी नहीं दी जाती है, लेकिन कभी ये दिमाग में बात क्यों नहीं आई, मैं समझता हूं कि इस पर भी दी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इस बीच में अगर सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहा होता और एक प्रश्न पूछा जाता सिविल सर्विस में कि भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आप क्या उपाय सुझाते हैं, मान लीजिए एक प्रश्न पूछा गया, तो मैं सोचने लगा क्या उस प्रश्न के उत्तर में मेरा एक सुझाव यह हो सकता था कि कंपोस्ट खाद के लिए सरकार सब्सिडी दे। तो मेरे दिमाग ने बहुत साफ तौर पर मुझसे कहा कि नहीं, तुम ये लिखकर नहीं आ सकते थे। और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ये लिखकर नहीं आ सकता था, मैं और भी दूसरी चीजें दुनिया भर की चीजें लिखता, लेकिन यह नहीं लिखता, जबकि मुझे मालूम है कि जो केमिकल मैन्यूवर्स हैं, जो खाद हैं, उन पर सब्सिडी दी जाती है। तो दिमाग में अकर करना चाहिए कि भाई जब आप जैविक खेती करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो उसका जो जुड़ाव है सीधा संबंध खाद से है, गोबर का खाद, कूड़े कचरे से बनाया गया खाद, इन्हीं सब खादों से है। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अलग से क्या कर रही है, ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि ऑर्गेनिक मैनुअर बनाने, खाद बनाने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से लोगों को प्रशिक्षित करती है। गांव में आप चले जाइए तो बहुत से ऐसे केंद्र खुले हैं, एनजीओज भी हैं, जो लोगों को खाद बनाना सिखाते हैं कि ऐसा गड्ढा खोदो, इतने बाई इतने का गड्ढा होगा, इतना गहरा होगा, इसमें फिर घर का सारा कूड़ा कचरा डालते रहो, घर का जो पानी बह करके आता है वो भी इसमें रहेगा, फिर वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कुछ केचुए वगैरह छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो उसे खा करके खाद में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर दे, और वो बाजार में बिकता भी है, तो इससे गांव वालों की आमदनी भी बढ़ती है और स्वाभाविक तौर पर खाद भी तैयार हो जाता है, जिससे जैविक खेती हो सकती है। लेकिन ये सब्सिडी वाली बात मेरे दिमाग में नहीं आई। फ्रेंड्स मैं इसको थोड़े से डिटेल में जाकर के क्यों कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये मैं कोई क्यों ऐसी बात कह रहा हूं, एक लाइन कह के मैं खत्म कर देता। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि हमारे दिमाग किस तरीके से बड़ा जड़ हो जाता है। जड़ इस मायने में कि उसमें नए आइडियाज आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान सच पूछिए तो पढ़ने में, इसके बाद उसको रटने में, और रटने के बाद उसे याद रखने में होता है। सोचने में हम समय नहीं लगाते हैं। सोचने में हम समय इसलिए नहीं लगाते, एक तो हमारी सोचने के प्रति हमारी आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, दूसरा यह कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं रह गया है। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक अपील की थी, खासकर अपने उन स्टूडेंट्स से जो शहरों में रहते हैं, और गांव जिन्होंने नहीं देखे हैं, बड़े बड़े शहरों के लोग तो गांव नहीं देखे हैं, अगर देखा भी होगा तो ऐसे पिकनिक मनाने गए और आ गए, या कार से गुजरते हुए गांव को देख लिया, उससे गांव दिख तो जाता है लेकिन गांव समझ में नहीं आते। तो मैंने अपील की थी कि एक दो दिन प्रोग्राम बना करके जाइए और गांव की समस्या को समझने की कोशिश कीजिए, वहां से आपको सिविल सर्विस के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए बहुत से ओरिजिनल थॉट्स मिलेंगे। वहां जब आप जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जनधन योजना की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मनरेगा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां के स्वास्थ्य केंद्रों की क्या के क्या हालात हैं, वहां के जो स्कूल हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एनजीओज वहां किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, जो महिलाओं के संगठन बने हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो कितने सफल हैं, उनके रास्ते में क्या बाधाएं हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि ग्रामीण विकास के जो सारे प्रयोग हो रहे हैं वो तो गांव में हो रहे हैं, और हमारे साथ संकट यह है कि हम इनके सारे प्रयोगों के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं वो अखबारों के जरिए जानते हैं। तो अखबारों से ज्ञान तो मिल, इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगा लेकिन विजन तो नहीं मिलेगा। ये अखबारों का दोष नहीं है, अखबारों की वो सीमा है। तो विजन तो जब हम प्रैक्टिकली इंटरैक्ट करते हैं तब मिलता है, और मुझे समझ में आया कि चूंकि मेरा प्रैक्टिकली इंटरैक्शन नहीं है इसलिए ये सब्सिडी वाली बात मेरे दिमाग में नहीं आई। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी एक दो दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर सिक्किम गए, सिक्किम ने सबसे पहला स्टेट हमारे देश का बना जो टोटली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बात भी कही कि इसको हमें बढ़ावा देना है, इस पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी। उसी के एक्सटेंशन में यह बात है कि अब सरकार कंपोस्ट खाद को भी 1500 रुपए प्रति टन का सब्सिडी देगी, निश्चित रूप से इससे किसान प्रेरित होंगे। सिविल सर्विस में जो आपको अपने लिए चीजें जुटानी पड़ती हैं वो लगभग लगभग इसी फॉर्मेट में जुटानी पड़ती हैं, और सच पूछे तो इसीलिए अखबारों का महत्व भी है, इसीलिए न्यूज का भी महत्व है, और अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इसीलिए इस तरह के डेली ऑडियो गाइडेंस का भी महत्व हो जाता है, क्योंकि वो डेली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, उसमें से अब आपको अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें फिर से निकाल करके और वो आपको नोट कर लेनी है, और इस तरीके से साल भर में आप लोगों के पास एक अच्छा खासा ज्ञान का खजाना, इंफॉर्मेशन का खजाना इकट्ठा हो जाएगा। और जब एक बार आपके पास बहुत चुनिंदे, बहुत खूबसूरत और बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर एनालिसिस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एनालिसिस करने में दिक्कत ही तभी होती है जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तब हम कुछ भी ऊपर ऊपर की बातें कह करके अपने 200 शब्दों का जो हमारा कोटा है पूरा करके चले आते हैं, और कभी तो लगता है कि पेपर अच्छा बना है और कभी लगता है कि नहीं यार ज्यादा अच्छा नहीं बना है। तो मित्रों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी जो मुझे आपको बतानी थी। आप देखते हैं कि फिर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, न्यूज में उसके थोड़े से क्लू भी दिए हुए थे, उसके सूत्र भी दिए हुए थे कि किस तरीके से इसी की वजह से और दूसरे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सोसाइटी में या इकोनॉमिक के क्षेत्र में जो भी काम होते हैं वो इकलौते में नहीं होते, आइलैंड के फॉर्म में नहीं होते, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसका असर स्वाभाविक रूप से हमारे स्वच्छता अभियान पर भी पड़ेगा। शहर का इतना कचरा निकलता है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, जब आप शहर में एंटर करते हैं तो एक दिशा में आप देखेंगे कि कचरों का पहाड़ लगा रहता है, शहर का जितना भी कचरा रहता है वो वहां फेंक दिया जाता है, पहाड़ सा बनता चला जाता है, वहां पन्नियां होती हैं और बहुत विचित्र सी स्थिति होती है, कहीं धुआं उठ रहा होगा, कचरा जलाया जा रहा है, तो आखिर वो भी तो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। तो ये सारे के सारे संकट वहां पैदा होते हैं। एक बार यदि इसको शुरू कर दिया गया और लोग प्रेरित होने लगे इस बात के लिए कि नहीं उन्हें कंपोस्ट खाद बनाना है, तो स्वाभाविक रूप से वो इन कचरों का इस्तेमाल कंपोस्ट खाद के लिए करने लगेंगे और इसका सीधा प्रभाव भारत का जो स्वच्छता अभियान है उस पर पड़ेगा और हमारे शहर साफ सुथरे होने लगेंगे। इसको आप इससे भी ऐड करके जो देख सकते हैं, जो न्यूज में इधर इंडिकेशन भी था, इस बात का इंडिकेशन भी था। इसके बाद मित्रों, जो दो तीन और जो छोटी छोटी खबरें हैं, आपने देखा कि पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 25 स्टूडेंट मारे गए और लगभग 50-60 लोग घायल हुए हैं। आपको याद होगा, अगर आप थोड़े से लंबे समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसी तरह की एक घटना लगभग 12-13 महीने पहले एक स्कूल में हुई थी जिसमें लगभग 100 से भी अधिक स्टूडेंट्स मारे गए थे। वो बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी और यह भी कम दिल दहला देने वाली घटना नहीं है। इससे साफ लग रहा है मित्रों कि किस तरीके से जो पाकिस्तान खुद आतंकवादी इस तरह की गतिविधियों का शिकार होने लगा है। इसीलिए अब पाकिस्तान को थोड़ी सी अपने नीतियों में बदलाव लाते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये तो अब पूरा का पूरा विश्व लगभग मानने लगा है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सीमा का क्षेत्र है, वहां बहुत ज्यादा इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों के एक तरह से स्कूल से बने हुए हैं, वहां प्रशिक्षण केंद्र हैं, शिविर हैं और एक तरह से गढ़ सा बना हुआ है। दुर्भाग्य यह है कि जब वो दूसरे देशों पर आतंकवादी हमला होता है तो वो उनकी लिपापोती करने की कोशिश करता है, और जब खुद पर हमला होता है तो फिर वो उस पर चिंतित होता है। और आप जानते हैं कि चूंकि पाकिस्तान पर खुद ही सेना का और जो गुप्तचर एजेंसीज हैं उन सब का इतना जबरदस्त दबाव है कि सरकार एक तरीके से बहुत ही उनके सामने विवश सी दिखाई देती है। लेकिन एक बड़ी बात तब होगी जब जनता में एक आक्रोश होगा इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों के प्रति, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस तरह का आक्रोश उभर रहा है, पूरी दुनिया में। आपने एक और भी न्यूज सुनी कि किस तरह से अफगानिस्तान में भी यह बात हुई है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो इस आतंकवादी गतिविधियों के लिए बहुत मुफीद है। एक दूसरी घटना थी, दूसरी न्यूज थी। तीसरी दोस्तों, हैदराबाद विश्वविद्यालय में जो एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि अलग अलग एंगल सुनने और देखने में आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या शेप लेता है। सिविल सर्विस के लिहाज से उसका राजनीतिक पक्ष तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो चीजें जो अभी शेप नहीं ले पाई हैं वो ये हो सकती हैं कि किस तरह से विश्वविद्यालयों में भेदभाव की नीतियां चल रही हैं या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगा है, इसको लेकर के एक बात हो सकता है कि आगे जाकर के कोई कॉन्क्रीट शेप में उभरे, तब फिर ये सिविल सर्विस के लिए कुछ एक प्रश्न बन सकता है। लेकिन चूंकि ये घटना एजुकेशन से जुड़ी हुई घटना है इसीलिए आपकी जानकारी में ये इसका होना मैं समझता हूं कि जरूरी है। इसके बाद मित्रों, एक और जो छोटी सी खबर थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, जो खासकर गंगा की सफाई अभियान, गंगा सफाई अभियान हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और आपने देखा है कि 2015 में नमो नमामि गंगे और इस पर प्रश्न भी आया था, तो उसके बारे में केंद्र सरकार ने खासकर गंगा के किनारे लगभग 100 जो उद्योग लगे हुए हैं उनको बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने जो प्रदूषण, खासकर जो पानी गंगा नदी में वो डालते हैं अपने यहां से उत्पादित, उसकी निगरानी का जो एक सिस्टम लगाना चाहिए वो उन्होंने अभी तक नहीं लगाया है। तो एक अच्छी बात है कि अब सरकार कम से कम गंगा की सफाई के बारे में एक हार्ड स्टेप ले रही है, और इसी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ शायद अच्छी चीजें घटित हों। इसके बाद दोस्तों, आखिरी खबर खासकर वो शेयर मार्केट को लेकर के थी कि भारत का जो शेयर मार्केट है वो काफी गिरा 1.7%, लगभग 418 पॉइंट जो एक दिन में गिरे हुए मार्केट को बहुत बड़ा आंकड़ा शो करता है, और साथ ही रुपया भी बहुत कमजोर हुआ और लगभग 68 रुपीज के करीब रुपया पहुंच गया है, और आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से में ही रुपये में कितनी तेजी से गिरावट आई है, और उसका कारण केवल जो ज्यादा दिखाई दे रहा है वो ये है कि चाइना का जो चूंकि निर्यात घट रहा है और चाइना ने अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया है, ऐसी स्थिति में भारत को भी अपने निर्यात को बनाए रखने के लिए या चाइना के सामान का प्रतिस्पर्धा में विश्व मार्केट में मुकाबला करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि वो उसके भी मुद्रा का अवमूल्यन हो डॉलर की तुलना में। शायद इसीलिए सरकार इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होगी, आशंकित भी नहीं होगी, और उस पर कोई बहुत ज्यादा वो हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे, नेचुरल तरीके से वो चलने दे रही है। तो मित्रों, इतनी ही खबरें न्यूज में थी। जहां तक न्यूज़पेपर का सवाल है, मैं ढेर कुछ क्लिपिंग्स आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी का तो है, जीएम फसलों पर भी है, एक सम विषम फार्मूले को लेकर के भी एक आर्टिकल है मित्रों, मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा आर्टिकल है, वो आप लोग जरूर देखेंगे। उस आर्टिकल में आपको दो तीन अच्छी पॉइंट्स मिलेंगे कि ठीक है, सम विषम फार्मूला के माध्यम से एक प्रदूषण को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। जैसे अभी रिपोर्ट ही आई है कि लगभग लोगों का मानना है कि 12 से 14% के बीच में जो प्रदूषण था वो कम हुआ, लेकिन सबसे बड़ा फायदा लोगों को ये दिखाई देने लगा कि सड़कों पर कम से कम भीड़ भाड़ कम हुई। इससे दिल्ली के लोगों फिर से उत्साहित है कि इसे कंटिन्यू किया जाए। उसको लेकर के उन्होंने दो तीन और बातें लिखी हैं कि इससे बात नहीं बनेगी, बल्कि जो कार के प्रति हमारी नीति है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, साइकिल वगैरह के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा जोर देना होगा। इस तरह की बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऑड इवन फार्मूला एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो प्राय प्रयोग के तौर पर दिल्ली में किया गया, तो इस पर भी आपकी थोड़ी सी समझ विकसित होनी चाहिए। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सबसे पहले मैं दो स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूं दोस्तों, जो अभी फरवरी के बैच में आ रहे हैं। इनमें एक है गौरव सिंह, जो इलाहाबाद से आ रहे हैं, और इन्होंने लिखा है कि इलाहाबाद और प्रतापगढ़ से आने वाले स्टूडेंट्स उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गौरव सिंह का मोबाइल नंबर है 7052 9883 96। दूसरे स्टूडेंट है नीरज, जो जयपुर से आ रहे हैं। नीरज का मोबाइल नंबर है 9351884215। मित्रों, अब और कुछ और ईमेल मेरे पास, मेल आया है सचिन कुमार का, जो अलीगढ़ यूपी से हैं, और इन्होंने अभी यूपी लोअर पीएससी का प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसके लिए सचिन आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। इन्होंने लिखा है कि मैं यूपी के लोअर पीएससी प्री एग्जाम 2015 जो 17 जनवरी को था एपियर हुआ, और जब मैंने अपना क्वेश्चन पेपर खोला तो मैं देखकर बेहद खुश हो गया कि 150 में से 53 क्वेश्चन वे थे जिनको मैंने डेली ऑडियो गाइडेंस में सुना था और न्यूज क्लिपिंग्स में भी पाया था। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो सचिन, आपने सूचित किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और भविष्य की सफलताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। एक मेल है दोस्तों शिवम पांडे का, जो बीए फाइनल के स्टूडेंट है। उन्होंने पूछा है कि क्या अभी से कोचिंग करनी चाहिए। तो शिवम, ये आपका निर्णय होगा, मैं बताना बड़ा मुश्किल है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपकी जरूरत है या नहीं है। लेकिन अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप बीए फाइनल में हैं, तो जितनी जल्दी आप कोचिंग कर लेंगे उतनी जल्दी आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा और उससे आप उतना ही ज्यादा लंबे समय तक फायदा उठा सकेंगे। इसी तरह से एक और मेल है प्रशांत का, जो छतरपुर से हैं। उन्होंने लिखा है कि 2018 में वो आईएएस के एग्जाम में बैठेंगे, तो उन्हें अभी से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स के नोट्स अगर 2018 में बैठने हैं तो उसमें अभी बैठना है, तो उसमें अभी समय है, तो करंट अफेयर्स के नोट्स मत बनाइए। बाकी अगर आप जो दूसरी तैयारी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बट नेचुरल है कि आखिरी के डेढ़ एक साल में आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के जो बेसिक्स हैं उस पर आपकी तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। तो मित्रों, इसके बाद और भी बहुत से मेल हैं, सभी लिखने वाले मैं अपने प्रिय श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सुधांशु अग्रवाल विदिशा मध्य प्रदेश से, सुमित सैनी दिल्ली से, पवन कुमार मौर्य इलाहाबाद से, दलवीर सिंह कासगंज उत्तर प्रदेश से, अतुल सिंह इकबाल सुल्तानपुर दोस्त मुरादाबाद से, अजय प्रसाद इमाम अली विंध्येश्वरी प्रसाद त्रिपाठी इलाहाबाद से, सिमरन कश्यप और चंद्रगुप्त प्रताप सिंह बलिया उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।